वतन का राग। भगत सिंह के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें सुनिए वरिष्ठ रंग कर्मी दिनेश दीक्षित के साथ। भाग 4। प्रस्तुति अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM।
भगत सिंह और 5 अन्य क्रांतिकारियों पर बिठाए गए विशेष ट्रिब्यूनल को उनके द्वारा 5 मई 1930 को लिखे गए पत्र में क्रांतिकारियों ने कहा, अगर कोई सरकार जनता को उनके मूलभूत अधिकार से वंचित रखती है तो जनता का केवल यह अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को जनता तबाह कर दे। इस पर 6 साथियों का ऐलान था, अंग्रेजों की अदालत एक ढकोसला है। 20 मार्च 1931, फांसी के 3 दिन पहले पंजाब के गवर्नर को एक पत्र लिखकर भगत सिंह और उनके साथियों ने मांग की थी कि उन्हें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और ये युद्ध निर्णायक होगा। यही वो लड़ाई है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। हमने ये युद्ध न तो प्रारंभ किया है और न समाप्त करेंगे। ये हमारे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। अंग्रेज सरकार के न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी करने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं। इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। उसे ये फिक्र है, हरदम नया तर्ज वफा क्या है। उसे ये फिक्र है, हरदम नया तर्ज जफा क्या है। हमें ये शौक है, देखे सितम की इंतहा क्या है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह द्वारा जब फांसी की सजा बदलवाने के लिए भगत सिंह की सहमति के बगैर बचाव याचिका लगाई गई तो उन्होंने आहत होकर 4 अक्टूबर 1930 को अपने पिता को पत्र लिखा, पिताजी मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है जितनी कि आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं है कि इसे देश की आज़ादी के बदले बचाया जाए। पिताजी मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है कि आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त न हो जाए, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि ये कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। ये एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान होना था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे। आपका भगत सिंह। जब भगत सिंह की माँ अपनी आँखों में आंसू लेकर इनसे जेल में मिलने आई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, बेबे तू मेरी मौत पर आंसू मत बहाना, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये भगत सिंह की माँ होकर रोती है। बस इतने में ही जेलर का फरमान आ गया। मुलाकात का समय अब खत्म हुआ। बेबे आंखों में आंसू को जबरदस्ती रोकती अपने मुंह में अपना ही आंचल ठूस कर जेल के बरामदे से वापस निकल आई। मेरी हवा में रहेगी ख्यालों की खुशबू, ये मुझसे खाक है पानी, रहे रहे न रहे। जेल से वो चिट्ठियां लिखते और अपने दोस्त जयदेव के हाथों किताबों में रख कर वो चिट्ठियां जेल पार कर जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिड़ियाएं सलाखों को बेझिझक पार कर उड़ जाती हैं। वे जयदेव से और किताबों की फरमाइश एक लिस्ट के साथ किया करते। लाहौर में द्वारकादास लाइब्रेरी थी जहां से जयदेव किताबें इशू करवा कर भगत सिंह को दिया करते थे। भगत सिंह जेल में लगातार अपनी नोटबुक लिखते रहते थे। किताबों से अपनी नोटबुक में चुनिंदा हिस्से लिखते रहते थे, अपनी टिप्पणियां लिखते रहते थे। वो नोटबुक शोधकर्ताओं ने खोज निकाली और उसे प्रकाशित किया, शहीद आजम की जेल डायरी। उनकी जेल डायरी में 108 लेखकों के नोट्स और टिप्पणियां हैं। भगत सिंह के जाति को लेकर भी प्रगतिशील विचार थे। अछूत समस्या पर 1928 में कीरति में छपे उनके लेख के अनुसार, वरना जरा सोचो कितने शर्म की बात है, कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निस्संग घूमता फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे संपर्क हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो गया ही समझो।
वतन का राग, भगत सिंह के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। प्रस्तुति अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM।